यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतक द्वैपायनो विरहकाकर्याजुहा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं त्वयैवास्मि त्वयैवास्मि न जीवामि त्वया इति विज्ञाय राधितं नय मां च यत्किं करिष्य बहुशः खलु काकुवाणि नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखन्नमो यस्याकदारश्मिति विस्फुटे विकुञ्ज भवनाङ्गनमनिजं नन्दः सपुत्रम् आदाय प्रोष्यवत् उदारभि मूर्ध्न्य अवघ्राय परमां मुदं लेभे कुरुद्वः में बतलाया कि और जितनी भी ब्रज में दंपतियां थीं उनकी अपेक्षा नंद बाबा जसोदा रूप जो दंपति थी उन्हीं को सबसे अधिक कृष्ण में वात्सल्य प्रेम था। प्रथम से पहले उन्होंने बतलाया ये ब्रह्मा के वश से द्रोण और धरा का कृष्ण में ऐसा प्रेम होना संभवपर नहीं है और शंकर जी के वरदान से कृष्ण को द्वारका में सांब जैसे पुत्र का होना ये संभवपर नहीं है। तब कृष्ण तपस्या करने के लिए दिखलाया जो लोग शंकर की उपासना करके पुत्र धन संपत्ति सब पा सकते हैं जैसे मैं पाया। कृष्ण के जो पुत्र हुए हैं यथार्थ में कोई भी उनका पुत्र नहीं, सांबई हो, प्रद्युम्न हो, अनिरुद्ध हो, नाती हो और कोई हो, ये तो भगवान के अंश हैं। पुत्र रूप में उन्होंने दिखलाए, ये सब किसी के बर से ये सब नहीं, ये तो लोगों को ऐसा भाव दिखनाने के लिए उन्होंने ऐसा किया, ये लोक वंचना है और लोगों को शंकर के प्रति कुछ लौकिक भावों को प्राप्ति के लिए उपासना कर सकते हैं इसके लिए दिया। तो ये सब उनके द्वारा संभव नहीं। वो नंद बाबा और जसोदा सब समय नित्य ही उनके पुत्र हैं, ये चीज को समझा। जितने भी और बाकी लोग हैं सब इनके अंश हैं। वसुदेव देवकी, दशरथ, कौशल्या, कृष्ण गर्भ और सुतपा, चाहे कश्यप अदिति हों, सब नंद बाबा और जैसे कृष्ण के सभी नारायण प्रभृति अंश सब हैं, ऐसे इनका भी संग। परिकरों में कृष्ण के परिकर ही सबसे श्रेष्ठ हैं, इस चीज को समझा। अब साधारण रूप में वहां पर वर्णन करके माता पिता का भाव और कैसे है और भी दो चार श्लोकों में उसको वर्णन कर रहे हैं। नंद बाबा जी पहले संसार से विरक्त थे, संसार के किसी भी विषय इत्यादि में मन नहीं लगाते और इसी कारण से सब भाई इनको अधिक प्रेम करते थे, पिताजी भी इन पर अधिक प्रीति रखते थे, सब भाइयों का यथा योग्य स्नेह करते थे। किंतु जब कृष्ण पैदा हुए, पहले वो कंस के दरबार में नहीं आते थे, क्या जरूरत, क्या कर लेगा, बेपरवाह थे कृष्ण। किंतु कृष्ण के प्रकट होने पर पुत्री भूते जनार्दने, पुत्री भूत के रूप में जब कृष्ण पैदा हुए, तब से वो लड़के के पालन पोषण करने के लिए कुछ अर्थ चाहिए, कहीं राजा ना बिगड़ जाए, वो उत्पात कर सकता है, इसलिए स्वयं कंस को कर देने के लिए गए। पुत्र होते ही उन पर इतनी आसक्ति हो गई और उसके रूप को देखा तो मुग्ध हो गए और इसीलिए वहाँ पर गए। और वहाँ पर गए हैं और वासुदेव से जब बातचीत हुई है, वसुदेव जी से, उसी समय रहने की इच्छा थी, आज रह जाएंगे, नहीं दूसरे दिन चलेंगे, किंतु उसी रात में ही वहाँ से चल दिए और चल करके यहाँ आ रहे थे, मथुरा गोकुल जा रहे थे, किंतु रास्ते में पूतना को देखा। जब घर लौटे और जब कृष्ण को सुरक्षित देखा तो मानो इनके प्राण हृदय में आ गए। अब उनका पहले जैसा विषयों में अनाशक्ति इत्यादि भाव ही नहीं रह गया। तब से नंदः स्वपुत्रम आदाय, अपने पुत्र को लेकर उदार अधि, अत्यंत उदार हैं, अब उदार हो गए, उदार अधि, जिनकी बुद्धि अत्यंत उदार है, क्योंकि जन्म के समय ही दूसरे दिन ही ब्राह्मणों को सर्वस्व दान कर दिया, जो गायें थीं, रत्न थे घर में, जो कुछ था, वस्त्र था, सब कुछ उन्होंने दान कर दिया, इतने उदार होकर के। मूर्धनावघाय अघ्राय परमांग मुदम लेभे कुरुद्वः, हे कुरुद्वः, कुरुओं में श्रेष्ठ परीक्षित महाराज, नंद बाबा उनके सिर को सुन करके अत्यंत प्रसन्न हो गए। ये तो हुआ साधारण अर्थ। अब चल रहे हैं इनकी टीका। इस प्रकार से, सामान्य प्रकार से नंद यशोदा का महात्मा पहले श्लोक में कर करके अब इस संबंध में कुछ विशेष बोलने के लिए पूतना मोक्षण आख्यान का शेष भाग श्रीपाद सुखदेव के द्वारा वर्णित नंद की मधुपुरु से स्वब्रजे, जब अपने ब्रज में आगमन कर रहे हैं, वहां से जब ही चले तभी वसुदेव जी ने कहा जल्दी से आप लौट जाइए, वहां पर राक्षसों का उत्पात चारों तरफ में आरंभ हो गया है, जितने बच्चे हैं 10 दिन के अंदर वाले और थोड़ा सा बाहर वाले, सबको मारने का संकल्प इस दुष्ट ने किया है कंस ने, इसलिए आप जल्दी से लौट जाइए। और रास्ते में ही ये पड़ी हुई पूतना को देखा 6 माइल के अंदर में, अब इनके प्राण भकभक हो गए। उस समय में आगमन कालीन उनके चरित्र विशेष का वर्णन कर रहे हैं। रात में लौट करके जब नंद मथुरा से ब्रज में आगमन पूर्वक अपने पुत्र को क्रोड़ में धारण किया, महाविपत्ति से ये बचा। और सुना उपानंद इत्यादि से सुना जे अपने गोदी में लेकर और राक्षसी ने अपना स्तन जोर जबरदस्ती इसको मुख में दे दिया और बच्चा उस समय डर के मारे आंख बंद कर दिया था और तभी जोर से उसके मुख में स्तन दे करके और विष उसमें ढाल दिया। न जाने कैसे ये बच्चा और फिर लेकर के आकाश में उड़ गई। वो तो आकाश में उड़ी किस लिए, छुड़ाने की चेष्टा की, जब नहीं छुड़ा तो सोचिए जैसे कंस के पास जाएंगे तो वो छुड़ा दे, एक मिनट में हम पहुंच जाएंगे। और जब उड़ी तो ऐसे जोर से खींचा जो उसके प्राण तक दूध के साथ साथ में, दूध तक बीस बीस के साथ साथ में प्राणों को भी एकदम हरण कर लिए। उस समय काल के हाथ से बचे हुए पुत्र को देखकर अपने आंखों के जल से सिक्त करने लग गए बच्चे को, बच गया बड़े सौभाग्य से, मैं नहीं था, ये भगवान ने इसे बचा दिया। मूल श्लोक में स्वपुत्र शब्द है, स्वपुत्रम आदाय, किंतु एक शब्द है प्रोष्यगत, प्रोष्यागत, प्रोष्यागत माने क्या होगा, और स्वपुत्र भी है। प्रोष्यागत माने होता है जिसको पोषने के लिए लिया, पोषने के लिए किसी को लड़का, जैसे कि किसी का एक लड़का अपना नहीं है, दूसरे का लड़का ले लिया। और स्वपुत्र माने है अपने पुत्र को, अब क्या सामंजस्य करेंगे, यहाँ उसी को दे। अधिकांश लोग जानते हैं कि प्रोष्यागत पुत्र ही है, ये पुत्र हैं देवकी वसुदेव के, और वो दे गए और उसको उन्होंने पाला पोसा। वसुदेव जी कृष्ण के प्रति ऐसा पुत्र भाव प्रकाश करने पर भी नंद अणुमात्र पुत्रत्व अभिमान अपगत है ने। वसुदेव जी मथुरा में कह दिया मैंने कुछ चोरी करके कहा, छिपा करके कहा, ऐसे नहीं कहा, हमारे पुत्र वहाँ है ऐसे कहा। तो इसमें हमारे पुत्र में बलदेव जी तो ही है, आधा तो ठीक ही है और आधे को छिपा गया। और फिर पीछे से कह दिया जिनका मन खराब ना हो जाए, हमारे लड़के को पालन पोषण ना करें, इसलिए कह दिया जिसे तुम्हारे भी पुत्र, उनको भी तो पुत्र हुआ, बड़े भगवान की बड़ी कृपा है उनको भी। किंतु वो भीतर से वो निकल आया उनका भाव, ये यह मेरा पुत्र ही है, वो भी जानते थे ये हमारा पुत्र। और नंद बाबा जी, नंद बाबा अपनी आँखों पर विश्वास रखते हैं, उन्होंने देखा जी हमारे घर में ये पैदा हुआ, यशोदा जी के गर्भ से पैदा हुआ, और नाड़ी मिली हुई अभी तक थी, इसे स्पष्ट क्या प्रमाण होगा माँ और बेटे का, इसलिए उनको किसी प्रकार से भी शंका नहीं। किंतु इनको भी शंका नहीं है, वसुदेव महाराज जी ये भी जानते हैं कि हमारा ही ये पुत्र है, कभी दिया कभी कभी, ऐसा मालूम होता है देखने से, बहुत से कारण हैं। वसुदेव जी का भी उन पर अधिकार देखा जाता है, क्या कारण है हमारा पुत्र है और कोई अपने घर में रख ले जोर जबरदस्ती और उसको पढ़ने के लिए भेज दे, उसका संस्कार कराए, और पिता चुपचाप रोता रहेगा घर में बैठे, ऐसा कभी होगा, ऐसा तो संभव पर। अंततः राजा के यहाँ नालिश करेगा, पंचायत बटोरेगा, जो हमारे लड़के को रख लिया, किंतु अपना दावी तो नहीं छोड़ सकते। क्या कारण है जिसे नंद जी फिर मथुरा क्यों नहीं आए और कहे जैसे नहीं हमारे बच्चे को छोड़ हम ले जाएं, ऐसा क्यों नहीं कहा, कोई तो कारण होना चाहिए। दूसरा एक कारण दिख पड़ता है, यदि कृष्ण का जन्म नंद बाबा के घर में हुआ, ये सब कुछ विचारणीय प्रश्न है। नंद बाबा के घर में कृष्ण का जन्म होता तो पास की जो लड़कियां थी जो उनके उम्र की थी, तो अपने गांव के अपने ही लड़के से और अपने ही पिताजी के भाई के लड़के से प्रेम करेंगी, ये कैसे होगा? ये तो गड़बड़ हो जाएगा, समझा कुछ? ये सब संभव कैसे होगा? अच्छा, वो तो थी लादनी शक्ति के प्रकाश है, लादनी शक्ति है गोपियां, उनमें तो जो है सो है। इस जगत के लोग, ये जगत के लोग न कहें जाए, देखो कृष्ण अपनी बहन से प्रेम किया, उनके साथ में रास किया, लोगों का मुख बंद करने के लिए भी इस प्रकार से उन्होंने ऐसा किया। कहते हैं ऐसा, किंतु फिर भी जो कुछ भी हो, किंतु जसोदा के गर्भ से पैदा हुए हैं और बतलाया है
नंदस्तु आत्मजो
आत्मजो उत्पन्न, और यहाँ पर कह रहे हैं नंद स्वपुत्रम आदाय। अब इससे अधिक बढ़ करके क्या, अपने पुत्र को गोदी में लेकर पुरुषगत उदार भी, पुरुषगत माने यहाँ पर पालन पोषण, बड़े उदार हैं कृष्ण के पालन पोषण का। अभी देखो ये बतलाएंगे वसुदेव जी यहाँ पर भी, और जब वहाँ पर मिले, जब कृष्ण को और बलदेव जी को लेकर के नंद महाराज यहाँ पर आए हैं कंस वध से पहले, और कंस का वध हो चुका है उस समय में वसुदेव जी ने इनसे बात नहीं किया, आए ही नहीं इनके डेरे तक, और ये प्रतीक्षा करते रहे, प्राण इनका धुक धुक हो रहा है। अच्छा क्या बात हुई कि कल कंस मारा गया और आज फिर शाम हो गई, 24 घंटे का अंतर हो गया अभी और बेसी, और वसुदेव या उनका कोई भी प्रतिनिधि उग्रसेन तक भी, और जो अक्रूर ले आया इतना कर सुनकर, कोई भी हमारे पास में नहीं आया खबर देने की, और कृष्ण और बलदेव भी नहीं आए। ये तो समझ में आता है कि कृष्ण और बलदेव दोनों स्वतंत्र नहीं है, अस्वतंत्र और बच्चे हैं, उनको आने नहीं दिया हुआ ये बात। किंतु वो लोग क्यों नहीं आए, क्या कारण? कहीं सुनते हैं कि वो लोग बतलाते हैं जैसे कृष्ण और बलदेव दोनों ही उन्हीं के बच्चे हैं, तो क्या इसलिए तो नहीं ऐसा कर रखा दोनों को? और सचमुच में ऐसा ही हुआ, कृष्ण को गोदी में बिठा करके देवकी, और वसुदेव जी बलदेव जी को, बेटा बहुत दिनों के बाद में आज तुमसे भेंट हुई, 11 वर्ष लग गए, मैं तुम्हें दे आया था वहाँ पर तुम्हारी रक्षा के लिए, इस कंस के लिए, आज तुम इतने दिनों के बाद में हमारे पास हो, तुम मेरा ही बेटा है, ये सब कहने लगे। बलदेव जी और कृष्ण दोनों आश्चर्य रूप में इसको देख रहे हैं, जब कोई नहीं गया वसुदेव जी वहां पर रो रहे हैं, नंद बाबा रो रहे हैं, सोचे जैसे क्या करूं, उनके दरबार में जाऊं भेंट करके जाऊं ना क्या करूं, वहां पर बैठे रहे, कोई भी विचार उनके हृदय में नहीं आया। शाम हो गई अंधकार, तो कृष्ण और बलदेव दोनों अकेले आए, देखा जे बाबा तो बड़े उदास हैं, अपने हाथों पर अपनी हथेली पर सिर रख दिया है, ये चिंता का द्योतक है। झटा करके उनको पकड़ लिया दोनों तरफ से, और उनके गोदी में एक तरफ ये एक तरफ वो दोनों बैठ गए। बैठ करके उनका ये पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया?
थोड़ी पकड़ ली।
बाबा तुम ऐसा क्यों क्यों बैठे हो अकेले चुपचाप? न किसी से बात न पूछ, क्यों अकेले बैठे? वो बेचारे देख करके बस झट संपैति मिली, सहानुभूति, और आंख से आंसू धड़कने लगे, गिरने लग गए। बलदेव जी बोले पहले, बाबा, नंद जी बोले, अच्छा बेटा तुम लोग आए क्यों नहीं, क्या बात हुई, आए क्यों नहीं? बलदेव जी ने कहा, जी बाबा बड़ी विचित्र बात हुई, जितने हैं सब ये लोग कहते हैं कि हमारे बेटे तुम लोग हो और देवकी के पुत्र तुम हो, कि मैं तो ऐसा मानता नहीं हूं। मान लिया कि मैं उनका पुत्र हूं, औरस पुत्र हूं, किंतु मैं आपके पुत्र के अतिरिक्त, मैं पिता के रूप में आपके अतिरिक्त किसी को नहीं जानता। यदि पुत्र हो भी और पुत्र को पिता ने त्याग कर दिया, मैया ने त्याग कर दिया, तो जिसने पाला पोषा वही तो माता पिता है। कर्ण इसीलिए जानने पर भी ये कुंती का मैं पुत्र हूँ कुंती के पास में नहीं गया। वो कहा जब मैं वही ठीक हूँ, कौन सा पुत्र?
राधेय।
राधेय ही नहीं, कुंते कौन थे या नहीं मैं कहलाना चाहता, मैं राधेय ही अच्छा हूँ और अंत तक इसको निभाया। तुम लोगों ने तो फेंक दिया था मुझे, जिसने पाला पोषा बड़ा किया वो। पिता बहुत तरह के होते हैं, जो जन्म देने वाले होते हैं, जो पालन पोषण करने वाले होते हैं, जो राजा होते हैं, जो दीक्षा इत्यादि देते हैं गुरु, और जो विपत्तियों में रक्षा करता है, ये सब, और जिसने अपनी कन्या को दान किया है वो भी ससुर भी पिता है, पुरोहित भी पिता होता है, इस तरह से बहुत से पिता हैं। इनमें सबसे श्रेष्ठ वही पिता है जो कि रक्षा करता है पुत्रियों की भांति पुत्रों। इसलिए मैं आप ही का पुत्र हूँ, आपके अतिरिक्त मैं किसी को नहीं जानता। बोले जी से मैं एक सेकंड यहाँ नहीं रह सकता, मैं तो आपके और कृष्ण के साथ में एकदम ब्रज में चला जाऊंगा चाहे जो कुछ हो। नंद बाबा ने कहा, बेटा ऐसा मत करना, नहीं तो वसुदेव हमारा छोटा भैया है मर जाएगा और देवकी मर जाएगी। इनको तो ज्ञान है इसलिए उदार है, ऐसा सोचते हैं, किंतु वसुदेव और देवकी ऐसा नहीं सोचते। मर जाए चाहे ब्रज वाले नंद और जसोदा का जैसा भी हो ये नहीं देखते, किंतु ये देख रहे हैं कि ये मर न जाए। इसलिए बलदेव जी को कहा, इसके बहुत से पुत्र, 6 पुत्र मारे गए और बड़ी मुश्किल से तुम लोगों को बचा सके, तुम यदि नहीं गया तो ये मर जाएंगे, इसलिए तुम यहाँ रहो, मैं कृष्ण को लेकर के जाता हूँ अपने बेटे। बलदेव जी ने कहा, जैसा मैं एक क्षण भी नहीं रहूंगा कृष्ण के बिना, मैं आप ही को बाप जानता हूँ और भाई जानता हूँ कृष्ण को, इसलिए मैं रहूंगा। कृष्ण की तरफ में नंद बाबा ने देखा, ये अब तो बड़ा हो गया है, बचपन में ही ये तो बड़ी बड़ी परामर्श हमको देता था, तो उनके तरफ में देखा जी क्या करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा, पिताजी मैं कहूँ? यदि कहिए तो, हमारे समय से बलदेव प्रभु जी का जाना इस समय ब्रज में ठीक नहीं है, माता पिता को ऐसी विपत्ति की स्थिति में देख छोड़ कर, और मैं यदि ब्रज में जाऊँगा तो ये भी जाएं, इसलिए यदि आप कहें तो मैं भी 2-4 दिन ठहर जाऊँ और ठहर करके दोनों भाई एक साथ में फिर लौट आएंगे। तो इन्होंने देखा जैसे इसका भी कुछ, इस पर भी उनकी बातों का कुछ चढ़ गया है प्रभाव, अब ये भी रहने के लिए कह रहा है, कुछ नहीं बोल, बस देखते रह गए। कृष्ण ने कहा जैसे, किंतु मैं आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूँ, किंतु बात ऐसे ही होगी, सब लोग कहेंगे नंद बाबा बड़ा निष्ठुर है और ये सब लड़के मर गए, और अंत में बलदेव और कृष्ण दोनों को साथ ही लेकर के गया और ये सब लोग मर गए, ऐसा मत कीजिए, मैं बस 2-3 दिन में कंस तो मारा गया है, उसके और सब बाकी जो है सबकी पूरी व्यवस्था करके मैं लौट आता हूँ, आप घर चलिए, आप ब्रज में लौट जाइए। आप ब्रज को कैसे लौटाया ये सब, अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी प्रश्न करते हैं, थोड़ा सा विचार करें, जिस व्यक्ति को जहां अधिक स्नेह मिलता है वहीं रहता है, चाहे वो कोई भी हो। आदमी अपनी मैया इत्यादि को छोड़कर के दूसरे के पास में रह जाता है जिसे कोई भी संबंध नहीं था और उसके पास में रह जाता है। जैसे अजामिल अपनी पत्नी, पुत्र, माता पिता, भाई सबको छोड़कर के उस व्यभिचारिणी शूद्राणी के पास में रह गया। क्यों? उसने अपने को ऐसे दे दिया उनको, न जाने कब का संबंध है, और उसके वो वशीभूत हो गए। वहां पर प्रेम कुछ अधिक मिला जो यहाँ पर नहीं था। दिखावटी प्रेम भी कभी कभी बड़ा ऊंचा हो जाता है, दिखावटी प्रेम में वो फंस गए। ऐसे ही जिस आदमी जीव मात्र ही प्रेम का भूखा होता है, कोई भी एक कुत्ता भी है, बस तू तू कह दो और ऐसे ऐसे कर दो, बस पास में आ जाएगा। प्रेम का भूखा, प्रत्येक जीव भी प्रेम का भूखा है। और कृष्ण तो प्रेम ही है, प्रेम की मूर्ति है। इनको जहां प्रेम मिलेगा अधिक वहीं तो जाएंगे। अब ये अभिसंवादित रूप में सत्य है कि ब्रज जैसा प्रेम कृष्ण को कहीं और नहीं मिलेगा, यह बात ठीक है। मात यशोदा जी और नंद बाबा इतना प्रेम करते हैं उनको, जिसका हजार भागों में एक भाग भी मथुरा में या द्वारका में और कहीं नहीं मिल सकता। इस स्थिति में कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके वहां पर कैसे रहे? दूसरी बात, गोपियों का जो प्रेम है यह अनवद्य है, निर्मल है, और ऐसा प्रेम उनको विश्व में कहीं भी गोलोक कहीं भी नहीं मिलेगा। और उस प्रेम को भूल करके मथुरा चले गए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं हमको विश्वास नहीं होता, कभी विश्वास ही नहीं है। इसलिए इन लोगों ने कहा जब कृष्ण मथुरा गए ही नहीं, वो ब्रज ही में रह गए। किस रूप में रह गए? अप्रकट रूप में वहां पर रह गए। लोग देख ना सके, किंतु वो मथुरा से कृष्ण और बलदेव जो यहाँ के हैं नंद बाबा के पुत्र, वो तो उनके साथ में बैलगाड़ी में, एक बैलगाड़ी में चले आए। और वसुदेव और देवकी के जो जिन अंशों में पुत्र हैं ऐश्वर्य सूचक, वो पुत्र वहीं पर कृष्ण और बलदेव रह गए। रोहिणी और देवकी के जो पुत्र थे वो वहाँ पर रह गए। इस चीज को किसी ने देखा नहीं। क्यों? भगवान की जोग माया से, अहेतु की अघटन घटन पटियसी जोग माया की शक्ति से किसी ने इस चीज को समझा नहीं। और वहीं से एक बैलगाड़ी में अकेले नंद बाबा ही रोते रोते और अपने बच्चों के साथ में और जो लोग उनके साथ में गए थे उनके साथ में कृष्ण को छोड़ करके लौटे, और एक बैलगाड़ी में एक प्रकाश में दोनों बच्चों को लेकर के चले। इसलिए कृष्ण सब समय वृंदावन में ही रहते हैं, ये हमारे गोस्वामियों का स्पेशल अनुसंधान है। वो विचार करते हैं वो ब्रज को छोड़कर वृंदावनम प्रत्यज पाद एकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़कर के जा ही नहीं सकते। और यदि जाते हैं तो इसका तात्पर्य है जब कृष्ण प्रेमी नहीं है अथवा ब्रज में प्रेम ही नहीं है तभी जा सकते हैं, ये दोनों बातें असंभव है, इसलिए वो ब्रज को छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। तदनंतर हुआ क्या? अब तो कृष्ण रह गए और सब जदुवंशियों को एकत्रित किया जो भाग गए थे कंस के अत्याचार के मारे। कोई वैदेह विदेह नगर में भाग गए, मिथिला में चले गए थे, कोई कहाँ चले गए थे, तो कहाँ चले, सबको बुलाए और बुला करके फिर से उनको वही राजमहल भवन इत्यादि आवंटन किया गया। उनका वैभव राजकोष से लौटा दिया गया। सब लोग बड़े प्रेम से वहां पर अब रहने लगे। इतने में अस्ति और नास्ति,
प्राप्ति
प्राप्ति, अस्ति और प्राप्ति, जरासंध की दो कन्याएं कंस की स्त्री अपने पिता के पास में पहुंच करके वहां पर नालिश की कि आपके जमाई आपके पुत्र बड़े निर्दोष थे। उन्होंने सोचा जब भांजा भांजा पर क्या हाथ उठाएं, और उनको देखते देखते वो नीचे उतार करके उनको जमीन में फेंक दिया, इन्होंने कुछ प्रतिवाद नहीं किया और उनको मार डाला। वो बड़ा क्रोधित हुआ और 17 बार आक्रमण किया, कितनी कितनी सेनाओं के साथ आक्रमण किया। अब कृष्ण सोच रहे आज जाऊं कल जाऊं, किंतु जा नहीं सकते, जाने न जाने के और भी कारण हो सकते हैं, इसलिए कृष्ण गए नहीं, उद्धव जी को भेजा और किया। इसके पहले उन्होंने उस बच्चे को देखा, जैसे अभी इसको पढ़ाया लिखाया तो गया नहीं, ये तो गौ में चराया है, इसलिए भेज दिया। और किस लिए? संस्कार के लिए, पढ़ेगा लिखेगा और मैं क्षत्रिय हूँ इस चीज का संस्कार होगा, इसलिए पहले उपनयन कराया अपने घर में, गर्गाचार्य जी को बुलाया, सब देश विदेश के लोगों को निमंत्रण गया सब जगह, किंतु पास ही में घर के आंगन के पास ही में ब्रज है, वहां पर नंद जसोदा जी को उपानंद इत्यादि जो अपने बड़े प्रेमी और भाई थे उनके पास में निमंत्रण नहीं भेजा गया, जान बूझ करके। यदि ये पहले मंत्रणा हुई सभा में, उग्रसेन जी सभापति थे और सब लोग, अक्रूर से भी परामर्श मांगा गया, उद्धव से परामर्श, सब लोगों ने मिलकर के एक स्वर से कहा यदि कृष्ण जाएंगे ब्रज में, नहीं ब्रजवासी लोग यहाँ आएंगे उपनयन में यदि, तो कृष्ण उनके साथ में लौट जाएगा, उसकी भाव उद्दीपना होगी और लौट जाएगा, इसलिए उनको निमंत्रण न देना ही अच्छा है। ऐसा कुछ भी न किया जाए कि उसके हृदय में ये भाव आए, ब्रजवासियों का भाव जगे, कोई रोक नहीं सकेगा उस समय, इसलिए उनको न बुलाया, ले जान बुझ करके उसमें नहीं बुलाया गया। और यज्ञ पवित्र करवाया, यज्ञ पवित्र में सब संबंधी कुटुंबी नातेदार सब लोग वहां पर एकत्रित हुए, वहां पर कृष्ण का उपनयन हो रहा था, गर्गाचार्य जी उनका उपनयन करा रहे, सिर मुंडन किया गया, चोटी रखी गई, खड़ाऊं उसमें पहनाया जाता है खड़ाऊं, और दंड दिया जाता है, लाल कपड़े पहनाए जाते हैं, ब्रह्मचारी का वेश बनाया जाता है, तब उनको उपनयन दिया जाता है, ये सब हुआ, पीली झुमली भी उनको पहना दी गई, ब्रह्मचारी का वेश पूरा एकदम उनको पहना दिया गया, गुरु जी ने मंत्र दिया ना, गायत्री मंत्र दिया और दे करके उपनयन इत्यादि उनको दिया गया। अब कहा जैसे बेटा भिक्षा मांग लाओ, भिक्षा ले आओ, जसोदा मैया ने कहा था कभी कृष्ण को, जे बेटा तेरा उपनयन हम जब कराएंगे तो तेरा तेरी झोली हम रत्नों से भर देंगे, उनको याद थी कृष्ण को, और उसी याद को स्मरण करते करते उस सभा में चारों तरफ देखने लगे, किसको, मेरी मैया कहाँ, इनको जब से आए हैं एक दिन भी मैया नहीं कहा, रोहिणी जी जब बुलाई गई तो रोहिणी मैया को कभी कभी मैया बड़ी मैया कह लेते हैं या छोटी मैया कह लेते हैं, किंतु देवकी को तो मैया कभी कहा ही नहीं, कभी उनसे भूख भी लगने पर कुछ मांगते नहीं, उदास रहते हैं सबसे। आज उपनयन के दिन में देवकी जी बनी ठनी हुई उनको भिक्षा देने के लिए आगे बैठी हैं और कृष्ण देख रहे हैं, मैया मेरी कहाँ, मैया मेरी कहाँ, उनको याद है इसलिए देख रहे हैं, देखते देखते याद आई मेरी मैया नंद भवन में खड़ी होगी कहीं, कैसे खड़ी होगी, दरवाजे पर खड़ी होगी, कभी घर में देखती होगी कभी बाहर, रो रही होगी न जाने क्या कर रही, अब मैं आराम से यहां पर उपनयन ले रहा हूं, बस मैया मैया कह करके और गिर पड़े मूर्छित हो। होश नहीं रहा। सब रह गया धरा, भिक्षा देना लेना सब धरा। सब जा करके बच्चे को उठाया, बस अब भिक्षा भी नहीं हुई, भिक्षा बंद हो गई। ऐसा देख रहे हैं सुन रहे हैं, तभी ब्रजवासियों को एकदम निष्ठ रूप से नहीं बुलाया गया। कहा जैसे अभी इसको अभी संस्कार है वहां का ब्रज का, भेजो बहुत दूर भेजो, सात समुंदर पार उज्जैनी वहां पर भेजो, और वहां पर कठोर रूप से व्रत आरंभ करके और गुरु जी के निर्देश में उनकी गैया चराएं और वहां पर रहे। कितना दिन तक? जितना दिन तक गुरु समझते हैं उचित उतना दिन तक रहे, और इसके बाद में यहाँ पर आए। उतने दिनों में इसका संस्कार पड़ जाएगा जो मैं राजा का, मैं वसुदेव जी का लड़का हूँ, बस भेज दिया। इधर में इन लोगों को किसी तरह से पता लगा कि उनको तो उपनयन करा दिया अपना बेटा मान करके, अब उसमें इनको कितना कैसा लगा होगा नंद और यशोदा जी, ब्रजवासियों को कैसा फिर हुआ, हमारे बेटे को जबरदस्ती उपनयन करा करके और क्षत्रिय बना दिया गोप से और भेज दिया यहाँ पर निश्चित होकर के उज्जैन में पढ़ने के लिए, और शंकर पंथी, क्या नाम उनका, सांदीपनी के पास, सांदीपनी जी त्रिपुंड लगाते थे और शंकर के उपासक थे, उनके पास में किस लिए भेज दिया? इसलिए कृष्ण की योगमाय ने कराया, कोई वैष्णव होगा तो इनको पहचान लेगा और शैव नहीं समझेगा, और अद्वैत भावना पर वो लोग हैं, इसलिए ऐसे ही लोगों के पास में जाएं जो भेद न खुले, इसलिए वहां पर भेज दिया। वहां पर गए और वहां पर 64 दिन तक रहे और 64 कलाएं उन्होंने सीख ली, और सब जो बातें हैं तो सब जान। वहां से लौट आए जब, तब उद्धव जी को ब्रज में भेजा, तो वहां पर यही कह रहे हैं, अपिवति मधुपुरिया आर्य पुत्रा धुनास्ते, कह रहे हैं गोपियां कह रही हैं, अपिवत मधुपुरिया आर्य पुत्रा धुनास्ते, अर्थात बहुत तरह के वाद विवाद करने के बाद में श्रीमती जी सोचती हैं, मैंने इसको दुत्कारा, गाली गलौज की, वाद विवाद किया, मैंने तो ये नहीं पूछा जे दूध को जे तुमने खाया पिया, या उनका तो कोई समाचार ही नहीं पूछा, इसलिए उनका मान वहाँ पर शिथिल हो गया, और शिथिल होने के बाद में तब उनसे पूछती हूँ, अपिवती मधुपुरिया आर्य जो हमारे, आर्य माने आर्य पुत्र कहते हैं पति को या प्रेमी को, तो यहाँ पर प्रेमी मैंने कृष्ण से इसके लिए नाम नहीं ले रही हैं, क्या आर्य पुत्र अभी लौटा है मथुरापुरी में? अपिवत मधुपुरी या आर्य पुत्रा धुनास्ते, क्या अधुना माने अभी वो गए थे पढ़ने के लिए संदीपनी के लिए कि हाँ उज्जैन में, वहां से लौट करके आ गए होंगे, अब रह नहीं सके होंगे वहां मथुरापुरी, क्या यहाँ आ रहे हैं, रास्ते में है? क्योंकि उन्होंने कहा था जी मैं परसों फिर आऊंगा, परसों तो बहुत वर्षों हो गया, अभी लौट करके नहीं आ रहे। क्या आर्य पुत्र अधुनास्ते, इसके बाद में कहते हैं जैसे वो क्या वो सखाओं के साथ में कुशल से तो वहां पर हैं, ओहो हमें वो भूल गए, क्या इसके बाद क्या मिल गया? आर्य पुत्र अधुनास्ते बंधुओं में सब ना, तो क्या वो हमें कभी भी स्मरण करते हैं किसी प्रकार से? कृष्ण कैसे स्मरण करेंगे? क्या कभी वहाँ की रमणीय फूल मालाएं गुथ करके लाती हैं, कहते हैं कि अरे गोपियां तो बहुत ही सुंदर से हार गुथती थी, क्या इस रूप में कभी स्मरण कर, या कभी तिरस्कार के रूप में भी, अरे वो तो ग्रामीण ग्वालिन थी, कुछ नहीं जानती थी, मूर्ख थी, क्या वो ऐसे बुझ सकेंगे? क्या इस रूप में भी हमारा स्मरण करते थे? कभी गान को सुन करके, नृत्य को देख करके, कभी हमारे भावों को कभी भी किसी रूप में तुच्छताछिल्य रूप में या प्रेम के रूप में, आदर्श के रूप में किसी प्रकार से हमारा स्मरण करती हैं? ये कहते कहते भुजम अगरु सुगंधम मुद्धन नभास्वत कदा, वो जो लंबी भुजाएं अगरु से मिश्रित, जिसमें अगरु जैसा गंध आता था, जिसके द्वारा उन्होंने रास के समय में हमारे गर्दन में लटक गए थे, प्रेम दिखलाया था, वो फिर उनकी भुजाएं, लंबी भुजाएं क्या हमारे यहाँ पर आकर के, हमारे सिर पर आ करके हमें अभय प्रदान करेंगे? अब मैं कभी नहीं ब्रज में जाऊंगा। तो इस तरह से नंद बाबा इत्यादि की भावनाएं बने बचपन से लेकर के अंत तक उनके प्रति बनी हुई है। अंत में वो लौट करके आए तो भी खबर नहीं दिया, इसके बाद में द्वारका चले गए, युद्ध हुआ तो भी इनको खबर नहीं दिया। अंत में जब कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण पड़ा तो वहां पर बिना बुलाए ही गोपियां और नंद बाबा सब लोग वहां पर गए और उनसे मिले। नंदा सुपुत्र कृष्ण यहां पर स्वप्रयोग के द्वारा स्वपुत्रम, केवल पुत्र कर दिया जाता तो प्रोष्यगत पुत्र हो सकता था, किंतु स्वपुत्र अपने पुत्र पुत्र को लेकर के वो गए, पुत्र मान रहा है जिसको उसको लेकर के गए, किंतु स्वपुत्र जहां पर होगा एकदम अपने द्वारा जन्म दिया हुआ पुत्र। शब्द का प्रयोग होता है स्नेह अतिरे और अपनत्व का भाव, ममत्व का भाव लेकर के हुआ, मम पुत्र यह दृढ़ीकृत हुआ, ये नंद बाबा के ही पुत्र हैं, ये वसुदेव जी के पुत्र नहीं, अपने पुत्र को लेकर। इस प्रकार से नंद अपने पुत्र को क्रोध में धारण कर आलिंगन एवं बारंबार मुख चुंबन करने लगे, मूर्धम अग्नाय पराकाष्ठा को परमानंद को प्राप्त हुआ, ऐसा वसुदेव जी को कभी नहीं हुआ। यह अत्यंत स्नेह का कारण, अथवा परमांगमुदम पसे परमां बोलते पृथक भूता महालक्ष्मी मुदस पदे सर्व भक्तगण पूजित महालक्ष्मी भी अलभ्य, लक्ष्मी जी को जो आनंद नहीं होता उससे भी बढ़ करके इनको आनंद होता है, इस भाव में इसका ग्रहण किया। परमांग मुदाम परम बोल कहने से महालक्ष्मी, महालक्ष्मी और मुद पद से सर्वभक्त गण पूजित उसी लक्ष्मी जी का जो अलभ्य आनंद है उसको उन्होंने प्राप्त किया। क्यों? उदार भी अत्यंत दानशील है, भगवान के जात कर्म हम पहले बतलाया था, जात कर्म के दिन अर्थात जिस समय जात कर्म का उत्सव हुआ, माँ और बेटे का स्नान और वो सब काटना और ब्राह्मणों को दान इत्यादि संस्कार होता है वो हुआ, उसमें उन्होंने महादानशीलता का परिचय दिया था। उदार माने होता है माने बुद्धिमान भी, महाबुद्धिमान, क्योंकि ये बुद्धिमान नहीं होते तो ब्रह्मा जी के निकट केवल भगवत भक्ति का वर मांगा, वात्सल्य प्रेम उचित भगवत सेवा की प्रार्थना की, पुत्र का नफाव नहीं मांगा, ये परम बुद्धिमत्ता का लक्षण है। पुत्र नहीं, केवल पुत्र मांगने से कुछ लाभ नहीं, पुत्र के प्रति भगवत भक्ति प्रेम मांगना ये उचित। हम लोग कृष्ण को हमारे संप्रदाय में या हमारे आचार्यों ने कृष्ण की प्राप्ति को ही प्रयोजन नहीं माना, कृष्ण प्रेम को ही प्रयोजन माना। कृष्ण प्रेम में भी प्रेम में विशेषण लगाया, माथुर विरह कातर ब्रजवासियों का प्रेम, माथुर विरह जो कातर ब्रजवासी है ऐसा प्रेम, गोपी प्रेम विशेष करके गोपियों में भी और ले गए, राधा प्रेम बतलाया, राधा वल्लभ। इसलिए भगवत भक्ति का प्रेम का वर मांगा, पुत्र का वर नहीं मांगा। वसुदेव जी ने पुत्र का वर मांगा, जे आप हमारे पुत्र हो, और इन्होंने कहा जे आपके प्रति हमारा वात्सल्य युक्त प्रेम। वसुदेव द्रोण और धरा देवी ब्रह्मा के निकट प्रार्थना किए, वसुप्रवर, वसुप्रवर द्रोण और धरा जी ने प्रार्थना किया था। ब्रह्मणी भगवत भक्ति एक प्रार्थना साथ, नमो महादेवे भूवि विश्वसरे हरौ भक्ति स्यात् परमा। ये वर्मा भक्ति स्यात् परमा, परमा भक्ति हमारी हो, परमा भक्ति माने प्रेमा भक्ति हो, ये ब्रह्मा ने मांगा था। कि पृथ्वी में यदि वो परब्रह्म हरि यदि जन्म ग्रहण करे तो विचित्र लीला में, मधुर लीला में, विश्वेश्वर में, हरि में हमारी परम भक्ति लाभ हो, ये प्रार्थना मांगा। और उन्होंने कहा कि आप ही के समान हमको पुत्र मांगो वसुदेव जी। इसलिए प्रार्थना सम्य जसोदा वो तादृश आनंद होगा इस। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारी पत्नी से पूछ लीजिए, तो पत्नी ने कहा जैसे ऐसा ही बढ़ने को चाहिए। और उन दोनों से पूछा तो उन्होंने पत्नी से पूछ लीजिए, पत्नी ने कहा देवकी उसमें मैं ये थी।